ذا كلاود. اوكي جاي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ قصص کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تھے کسی ایسے وقت میں جب لوگ سو رہے تھے تو انہوں نے دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا لڑنا بھی اس طرح سے تھا کہ ایک دوسرے کو مار رہا تھا، تو جس کو پٹائی لگ رہی تھی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ موسیٰ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنے کے لیے جو مارنے والا تھا اس کو ایک مکہ لگایا، تو وہ مکہ ذرا اتنا تیز لگ گیا کہ اس کا تو ناک آؤٹ ہی ہو گیا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ، یعنی وہ مر ہی گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنے کا. تو پھر وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد اگلے دن موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ پھر وہی جو کہ کل پٹ رہا تھا، پھر وہ کسی سے پٹ رہا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار یہ تو کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ اس کے ساتھ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مجھے تو تم ہی برے آدمی لگتے ہو. تو پھر اس کے بعد نا کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مارنے والا تھا، جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا مارنے والا، تو اس کو پکڑنے کی کوشش کری، لیکن دوسرا بندہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا وہ سمجھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایکچولی اس کو مار نہیں رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پھر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی وہ پٹ رہا ہے تو بس اس کو بچا لو، بے شک جو ہے وہ یعنی اب جو ہے وہ اس طریقے سے مارنے وارنے کا بالکل بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کوشش کری کہ کسی طریقے سے نا اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ جو پٹ رہا تھا تو وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مار رہے ہیں. تو اس نے پھر نا اس طریقے سے کہا کہ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ کیا تم اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کہ کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی نہ صرف یہ کہ یہ بندہ جو تھا یہ لڑائی جھگڑے کرنے والا تھا، بلکہ یہ نا زبان کا بھی بہت تیز تھا، اور زبان پر بھی اس کو کنٹرول نہیں تھا، بیکاز ہی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ سم تھنگ لائک دس نا، کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کری تھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سیکرٹ تھا کہ بھائی ان سے یہ قتل ہو گیا تھا بندہ، تو اس کو اس طرح سے ایکسپوز تو نہیں کر دینا چاہیے تھا. لیکن ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی کنٹرول آن ہز ٹنگ ایز ویل، ہاتھ پیر پر بھی اس کو کنٹرول نہیں تھا، لوگوں سے لڑتا پھرتا رہتا ہوگا، اور زبان پر بھی اس کو کنٹرول نہیں تھا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہونا تو پھر وہ ہی اینڈز اپ انٹو اے فائٹ، ٹھیک ہے. تو یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائیوں ہونے کی وجہ بھی جو ہے وہ زبان ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی خاموش آدمی جو ہے نا، جو آدمی خاموش رہنا جانتا ہو اور زیادہ ٹائم وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہو، خاموش رہتا ہو اور کم بولتا ہو، ضرورت کی وجہ سے بولتا ہو، خالی بلا ضرورت نہ بولتا ہو، ایسا شخص آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں سے لڑتا بھی نہیں ہے، فزیکلی بھی یہ کسی فائٹنگ میں انوالو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن جو زبان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، جو ہے وہ کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، تو اب ظاہر ہے اگر کوئی کمزور بندے کو یہ برا بھلا کہہ دے گا اپنی زبان سے تو وہ اس سے زیادہ ویک ہوگا، وہ تو اس کے ساتھ لڑے گا نہیں.
लेकिन अगर ये अपने से किसी स्ट्रांग बंदे को कुछ बुरा भला कह देगा तो भाई नेचुरल सी बात है कि वो बंदे को उसके ऊपर गुस्सा आएगा, वो फिर हो सकता है कि इसको इत्तिका दे, मारना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपके लिए क्या इसके अंदर एक बहुत, यानी हम सब के लिए, नॉट जस्ट यू बट फॉर मी एज वेल, के एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल विद आवर टंग्स। ठीक है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद आवर टंग्स। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक मशहूर है, मन सामता नजा, सामता सौद से, मन सामता नजा, कि जो खामोश रहा ना वो निजात में रहा, यानी वो सेफ रहा, सिक्योर रहा। ठीक है, जो खामोश नहीं रहता बोलता है तो वो किसी ना किसी मसले के अंदर फंसता रहता है। ठीक है, तो जुबान को बहुत यानी सोच करके इस्तेमाल करना चाहिए। पहले जब भी कहते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर उर्दू का मुहावरा है कि पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, यानी फर्स्ट वे व्हाट यू आर गोइंग टू से एंड देन से इट। ठीक है, पहले सोचो कि तुम क्या कहने वाले हो, फिर उसके बाद बोलो। बगैर सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो नॉन मुस्लिम कल्चर है, स्पेशली अनफॉर्चुनेटली ये जो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर है ना, इसके अंदर आपको बोलने की बहुत ज़्यादा तालीम दी जाती है। ठीक है, आपको बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। ठीक है, बाकायदा स्कूल्स के अंदर बहुत शुरू से ही जो है वो पब्लिक स्पीकिंग को ना प्रमोट किया जाता है, और बच्चों से जो है वो तकरीरें करवाई जाती हैं। ठीक है, लोग बच्चों को जो है वो क्लास के अंदर खड़े होकर के जो है वो कुछ ना कुछ बोलना होता है, कुछ ना कुछ किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, कोई टॉक करनी होती है। ठीक है, तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच। तो स्कूल से जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जाता है कि यू शुड बी ए वेरी यानी एक्टिव स्पीकर, बहुत ज़्यादा बोलना, और बहुत ज़्यादा बोलने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसको बहुत उसकी तारीफ की जाती है। ठीक है, तो ये जो कल्चर है ना, ये तो नॉन मुस्लिम कल्चर है। नॉन मुस्लिम कल्चर इज नॉट गाइडेड बाय रेवलेशन। रेवलेशन क्या होती है? अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत मिली है उसको रेवलेशन कहते हैं ना। तो नॉन मुस्लिम कल्चर के पास तो रेवलेशन नहीं है, अगर थी भी तो अच्छी खासी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैनिपुलेट हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो तो अपनी समझ के मुताबिक और अपनी जो है वो डिजायर्स के मुताबिक, विम्स एंड डिजायर्स जिनको कहते हैं, जो भी उनके दिमाग में आते हैं कि हाँ भाई ये बात बड़ी अच्छी है, वो उसको करना शुरू हो जाते हैं। किसी से पूछते कोई थोड़ी है, कोई रसूल से कोई पूछते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल आप बताएं कि हमें ये काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनके पास कुरान तो नहीं है कि वो जिसमें देखें कि अच्छा हमें ये काम करना भी चाहिए, अल्लाह ताला की मर्जी भी है भी इसके अंदर कि नहीं है। तो वो तो आप अपनी मनमर्जी से काम करते हैं ना, और शैतान जो है वो जाहिर है वो भी लगा होता है उनको इस किस्म के आइडियाज देने के लिए। तो इस वजह से ना उनके जो काम होते हैं ना, हम उनको एज इट इज एडॉप्ट नहीं कर सकते। सही है, अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि स्लेव्स बन गए हैं नॉन मुस्लिम्स के। ठीक है, उन्होंने जो कलोनियलिज्म स्टार्ट किया था, यूरोपियन पावर्स जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर फैली हैं। कहीं पर जो है वो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, कहीं पे जाकर के जो है वो डच ने कब्जा कर लिया, कहीं पे किसी और ने फ्रेंच ने जाके कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सारी की सारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना वो उनकी स्लेव्स बन गई, और अभी तक हम उनके स्लेव्स हैं। अगर फिजिकली नहीं भी हैं तो हम मेंटली उनके स्लेव्स हैं। तो इस वजह से ना हम उनसे सब कुछ एज इट इज एडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमें उनमें नजर आता है वो हम वैसा का वैसा ले लेते हैं, हालांकि वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। ठीक है ना, वी कैन ओनली टेक समथिंग विच इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन टू कुरान एंड हदीस। हम वो चीज़ नहीं ले सकते जो कि कुरान से टक्कर करती हो, मिसमैच करती हो, या हदीस से मिसमैच करती हो, हम उस चीज़ को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस वजह से ना हम उनके इस कल्चर को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते। भाई ये जो ज़्यादा बोलने की बात होती है ना, कुछ लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी होती है, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं दी होती है। ठीक है ना, दे आर बेटर ऑफ नॉट स्पीकिंग टू मच। उनको अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा ही नहीं किया होता। आपने देखा नहीं, कुछ लोगों की नेचर होती है कि भाई वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, और कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से गिवन एक नेचर होती है हर बंदे के अंदर, ज्यादा बात करना है कि ज्यादा बात नहीं करना है, ये एक नेचर होती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉन मुस्लिम स्कूल सिस्टम है, ये ह्यूमन नेचर का इतना ख्याल नहीं करता है कि किसके अंदर क्या नेचर है, किसके अंदर क्या नेचर नहीं है। ये जो स्कूल सिस्टम है ना, जो कि सेक्युलर स्कूल सिस्टम कहलाता है, नॉन मुस्लिम से हमने अपने मुल्कों के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर ये नहीं देखा जाता। इस सिस्टम के अंदर हर एक को एक ही तरीके से लेकर के चला जाता है, हर एक को एक ही तरीके से, ठीक है। तो हर एक को जो है ना वो स्पीकिंग करवानी है, हर एक को बुलवाना है, हर एक को बुलवाना है। भाई नहीं होती हर एक के अंदर यार, बोलने की नेचर हर एक के अंदर नहीं होती, लेकिन वो बुलवाते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं। तो इस वजह से जो है ना होता क्या है कि जिन लोगों को तो पहले से बोलना आता है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द नेचर, तो वो तो खूब जबरदस्त तरीके से बातें करते हैं। और जिन लोगों को बोलना नहीं आता है ना, जिन लोगों को बोलना नहीं आता बिकॉज इट्स नॉट इन देयर नेचर, तो अब उनके जो है ना वो दो किस्म बन जाती है, उन लोगों की दो किस्में बन जाती हैं। एक तो वो जो कि कोशिश के बावजूद बोल ही नहीं पाते हैं, कोशिश के बावजूद उनको नहीं बोलना आता, वो नहीं बोल पाते हैं, तो उनके अंदर ना एक फीलिंग ऑफ फेलियर क्रिएट हो जाता है, फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डू समथिंग विच वॉज बीइंग प्रोमोटेड इन द स्कूल, जिसको कि बहुत ज्यादा स्कूल के अंदर एनकरेज किया जा रहा है, उसकी बेसिस पे आपको नंबर्स भी दिए जा रहे हैं और आपको जो है वो स्टार ऑफ द वीक भी मिल रहा है। ये स्टार ऑफ द वीक मिलता है ना, आप लोगों के भी स्कूलों में मिलता होगा, हर वक्त ही स्टार मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो बहुत ज्यादा बोल रहा है उसको स्टार ऑफ द वीक मिल रहा है, और ये तो बोल ही नहीं पा रहा है उसको स्टार ऑफ द वीक नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, ही इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस, राइट। उसकी तबीयत के अंदर तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी ना, तो उसके अंदर ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक किस्म के बच्चे होंगे कि जिनको बोलने की नेचर नहीं है, तो उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और दूसरे जिनको बोलने की नेचर नहीं है, जिनमें बोलने की नेचर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो फाइट करते रहेंगे हर वक्त, फाइट करते रहेंगे हर वक्त, हाँ भाई बोलना है बिकॉज टीचर कह रही है बोलना है, और अम्मी भी कह रही है कि जी तुमने बोलना है, और अब्बू भी कह रहे हैं कि तुमने बोलना है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना वो एक बहुत ही बुरी तरीके से बोलेंगे, ठीक है, यानी ये अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक बुरी तरीके से ये डिलीवरी करनी शुरू कर देंगे। और इसके जरिए से क्या होगा, जब ये बुरी डिलीवरी करेंगे ना तो लोग हंसेंगे भी, और इनको जो है ना एक फॉल्स फीलिंग ऑफ अचीवमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने देखो लोगों को हंसाया, आई एम सच अ गुड एंटरटेनर, मैं कितना लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोग हंसते हैं, ठीक है, और मैं जो हूँ वो लोगों के दरमियान बड़ा जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया हूँ, और मैं बड़ा, यानी ये क्या करेगा फिर, ही इज जस्ट गोइंग टू एंड अप मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ही इज गोइंग टू एंड अप और शी इज गोइंग टू एंड अप मेकिंग ए फन ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है, एंड ही एंड शी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो हाउ टू डू समथिंग एंड यू स्टिल कीप ऑन ट्राइंग टू डू इट, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट राइट, ठीक है। तो इस वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं जिनको नेचर होती है बोलने की, तो अब जो है ना वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से, बिकॉज उनकी नेचर है, और वो उसको एक बहुत बड़ा ना टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, और लोगों को के साथ जो है वो हंसी मजाक करेंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, और खूब जो है ना वो खुश होंगे इस बात के ऊपर, ठीक है, जिनको आता है ये, जिनकी नेचर है ये, ठीक है। और जिनकी नेचर नहीं है वो या तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, या दे आर गोइंग टू बिकम ए क्लाउन, वो क्लाउन बन जाएंगे, जैसे होता है ना क्लाउन ऑफ द क्लास, आपकी क्लास में भी यकीनन क्लाउन्स होंगे, एक से ज्यादा हो या एक ही हो, तो क्लाउन किस्म की वो चीज बन जाएगा जिसके ऊपर लोग जो है ना वो हंसा करेंगे खाली। तो दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे नहीं बनाया था, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनाया है कि इस दुनिया में तुमने उसके हिसाब से रहना है, जन्नत में जाकर के बोल लेना जितना बोलना है तुम्हें, तुम्हें पूरी आजादी होगी जन्नत में बोलने की, वहां पे कोई तुम्हें नहीं मना करेगा, ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर आप अपनी मर्जी से जो चाहें जो है ना वो नहीं बोल सकते हैं। जुबान के ऊपर अल्लाह ताला ने पहरे बिठाए हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्कि कुरान मजीद में क्या है, मा यंतिकु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, राइट, कि जुबान से कोई कलमा कोई चीज नहीं निकलती सिवाय इसके कि एक फरिश्ता उसको लिख लेता है, सिवाय इसके कि एक फरिश्ता उसको लिख लेता है। दिस इज कुरान, व्हाट इज दिस, दिस इज कुरान, दिस इज फ्रॉम आवर क्रिएटर, हमारे क्रिएटर हमें क्या कह रहा है कुरान के अंदर, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम्हारी जुबान से जो चीज निकलती है डोंट थिंक इट इज बीइंग इग्नोर्ड, वो इग्नोर नहीं की जा रही है बल्कि उसको नोट किया जा रहा है और वो तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे हक में इस्तेमाल की जाएगी। तो हमारा तो ये मामला है भाई, हम इसकी तरीके की थोड़ी पब्लिक स्पीचिंग के अंदर जो है वो स्टार ऑफ द वीक लेकर के जो है वो जन्नत कमा सकते हैं इस तरीके से। नो, दिस इज नॉट हाउ वी आर सपोज टू थिंक। मुसलमान इस तरीके से नहीं सोच सकता, मुसलमान की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और आप इस बात को, आप में से माशाल्लाह अच्छी उम्र के भी बच्चे मौजूद हैं, बहुत छोटे भी होंगे लेकिन 14 एंड अबव के लोग भी मौजूद हैं, 13 एंड अबव के टीनएजर्स इनको कहते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इट इज नॉट अबाउट हाउ मच वर्शिप यू डू। ठीक है, हमारा जो दीन जो है ना वो खाली ये नहीं करता कि आप वर्शिप करते रहें, इबादतें करते रहें और इधर भी जो है वो ज्यादा इबादतें करके आ जाएं, उधर भी ज्यादा इबादतें करके आ जाएं। नो, बिफोर दैट, बिफोर यू कैन एक्चुअली डू वर्शिप, यू हैव टू फिक्स योर थिंकिंग फर्स्ट। आपकी सोच सही होना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपकी सोच क्या है, आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या आप अल्लाह ताला की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं, क्या आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो डायरेक्शंस हैं जो कि एक सेक्युलर थिंकिंग की तरफ से आ रही हैं, एक सेक्युलर आइडियोलॉजी की तरफ से आ रही हैं, नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजी, नॉन मुस्लिम कल्चर की तरफ से आ रही हैं। अगर आपके लिए नंबर वन प्रायोरिटी नॉन मुस्लिम कल्चर की थिंकिंग है और नंबर टू प्रायोरिटी कुरान और सुन्नत है, फिर आपकी जो जितनी भी इबादतें कर लें, उम्रे कर लें, हज कर लें और जुमे की नमाजें पढ़ लें और जो कुछ भी कर लें, इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला को तो आपने अभी तक अपना परवरदिगार समझा ही नहीं है, अभी तक उनको वो मुकाम दिया ही नहीं है जो कि अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला विल नॉट बिकम हैप्पी विद दिस। ठीक है, दिस जस्ट लाइक कि आप जो है अपने अब्बू को जो है ना वो बहुत जो है ना अब्बू के लिए फादर ऑफ द क्या होता है वो फादर्स डे है ना, साल के अंदर एक होता है फादर्स डे, और फादर्स डे के अंदर आप अपने अब्बू को बहुत एक कीमती किस्म की ना वॉच ला करके दे दें, बहुत अच्छा प्रेजेंट ला करके दे दें। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पूछने के लिए आप जो बराबर में अंकल रहते हैं ना उन अंकल के पास जाकर के पूछें कि अंकल आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं है, है ना। और साल में एक दफ़ा फादर्स डे, या चले आप मंथ में एक दफ़ा, हर मंथ में आप एक फादर्स डे मनाया करें, सही है, और हर मंथ जो है ना वो आप अपने अब्बू को जो है एक बड़ी अच्छी सी प्रेशियस किस्म की कोई गिफ्ट ला करके दे दें, है ना, समझ में आ रही है बात, इज एवरीवन फॉलोइंग मी। आप हर मंथ फादर्स डे मनाएं और फादर साहब को जो है अपने अब्बू हजूर को वो कोई अच्छा सा गिफ्ट ला करके दे दें। लेकिन जब आपको ये पूछना हो कि जी मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर मी व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, वो आप जाएं बराबर वाले अंकल के पास जो बराबर के घर में रहते हैं और उनसे जाकर के पूछें। तो क्या ख्याल है आपका, अब्बू आपसे खुश होंगे, हैं बहुत अच्छा बेटा आप कितने प्यारे बेटे हैं, आप मुझे महीने में हर मरतबा एक बहुत अच्छा गिफ्ट ला करके देते हैं, हैं नहीं, अब्बू साहब जो है ना वो इससे कभी भी खुश नहीं होंगे, सही है। तो अब्बू तो कुछ है ही नहीं, अब्बू तो बस इंसान है हमारे जैसे, उनको भी बेचारे को भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं, हमें भी खाना खाना पड़ता है ना। अब्बू को जो है फिर वो उसके बाद और भी बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं, वो तो बेचारे खुद सारे काम कर भी नहीं सकते, उनको तो हेल्प की जरूरत पड़ती है, सही है। तो अब्बू फिर अब्बू जो है ना वो इतने छोटे होने के बावजूद अल्लाह ताला के मुकाबले में फिर भी वो खुश नहीं होंगे। और अल्लाह ताला के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर आप अल्लाह ताला के साथ ऐसा करेंगे कि हर महीने एक जाके उमरा करके आ जाएं काबतुल्लाह का, हैं, और आप जो है ना वो माशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से कुछ नमाजें शमाजें पढ़ लें, ठीक है, लेकिन व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू वो आप पूछें जी हैं अमेरिका जाकर के कि जी आप बताएं जी क्या चीज़ अच्छी होती है मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं होती है, सही है, तो कितना मज़ा आएगा फिर आपको। अल्लाह ताला जो कहेंगे दफा हो जाओ मेरे यहाँ से, ठीक है। پھر میرے پاس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ابو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو کے بھی پروردگار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر چیز کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا یہ ہے تھنکنگ کو کریکٹ کرنا، اگر یہ ہماری تھنکنگ کریکٹ نہیں ہوئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس تھنکنگ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، جب تک میری تھنکنگ صحیح نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں فرض نمازیں نہیں پڑھوں گا، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کو اس ایکسکیوز کے لیے استعمال بھی نہیں کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ نمازیں چھوڑنا جو ہے یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بے شک آپ کے دماغ میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی، لیکن پھر بھی نمازیں تو پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے، اور اگر آپ نمازوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بات آپ کے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات تو سمجھ اس میں اس وقت آئے گی جب آپ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کریں، اور ساتھ ساتھ پھر اپنی تھنکنگ کے اوپر بھی محنت کریں کہ میری تھنکنگ بھی ٹھیک ہو جائے، میری پرائیورٹیز اور میرے سوچنے کا انداز بھی ٹھیک ہو جائے۔ Do we have to celebrate Father's Day or not? Of course not. Of course not. There is no such thing as Father's Day. Every day is Father's Day. Every day is Mother's Day. There is no such thing as one Father's Day in the year. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل کلیئر رکھیں اس بات کو. Every day, every moment is Father's moment. صحیح ہے؟ یہ ہے ہمارا دین. یہ ہے اصل چیز. ٹھیک ہے؟ تو Father's Day بالکل بھی نہ منائیں. اور ایون اس لیے بھی نہیں کہ ہاں تو حرج ہی کیا ہے تو فادرز ڈے میں تحفہ دے دوں گا، نہیں. وائی آر یو کاپیئنگ دا نان مسلمز؟ رائٹ، وائی کاپی دا نان مسلمز؟ کبھی کسی صحابہ سے آپ نے سنا کہ انہوں نے فادرز ڈے منایا ہو؟ کبھی کسی علماء مشائخ نیک لوگوں سے کبھی سنا کہ انہوں نے فادرز ڈے منایا ہو؟ تو کیوں کاپی کر رہے ہیں نان مسلمز کو؟ بھائی ابو کو آپ نے تحفہ دینا ہے، کسی اور دن لا کر کے دے دیں، فادرز ڈے میں کیوں لا کر کے دیتے ہیں؟ یہ تو بالکل تشبہ بالکفار کہلاتا ہے نا، اینڈ دس از ناٹ الاؤڈ، دس از حرام. صحیح ہے؟ فادرز ڈے بالکل بھی نہ منائیں، اور ایوری ڈے اس کو فادرز ڈے سمجھیں اور مدرز ڈے سمجھیں، اور ہر ایک کا، چاہے ہسبینڈز ڈے ہو اور وائفز ڈے ہو، جو بھی ڈے ہو، ویمنز ڈے ہو، مینز ڈے ہو، بھائی ہمارے دین میں کوئی الگ الگ دن نہیں ہوتے ہیں، وہ سارے دن ہی ان کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو بات بھائی صاحب تھے جو کہ باتیں بھی بہت کرتے تھے اور باتوں کے نتیجے میں پھر جھگڑوں کے اندر بھی انوالو ہو جاتے تھے ہر وقت، تو انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا اگل دیا اس بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کل غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے مار دیا، تو اب جو فرعون کا نیشن والا بندہ تھا اس نے سن لیا اور وہ تو وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر کے اس نے جا کر کے سب لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی موسیٰ نے جو ہے نا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے ہمارے ایک بندے کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ پھر وہ فرعون کے پیلس میں بیٹھ کر کے پھر یہ ڈسکشن شروع ہو گئے کہ بھئی اب موسیٰ کو نا یہ تو بہت ہو گیا ہے، پہلے ہی اس نے جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کری ہوئی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ شرک سے روکتا ہے اور توحید کی طرف بلاتا ہے، تو اب تو اس نے بندہ بھی مار دیا ہے، اب تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اب تو ہم اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر وہاں سے نکلے، کیونکہ ان کو ایک بندے نے آ کر کے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پھر ہم نے پوری ڈسکشن پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی کہ کیا نان مسلمس کے ساتھ جب آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں، تو نان مسلمس کو آپ کیا مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے ہیں، کہ بھائی وہ تو نان مسلم ہیں وغیرہ، تو وہ ساری ڈسکشن ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے اوپر بس ایک جو کامنٹری ہے وہ پڑھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں، پیج 635 کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کستلانی ہیز آبزروڈ ان اس کامنٹری آن بخاری، یعنی صحیح بخاری میں انہوں کے اوپر جو انہوں نے کامنٹری لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ نو ڈاؤٹ دی ویلتھ آف انفیڈلز از پرمیٹڈ ٹو ٹیک پوزیشن ڈیورنگ وار اور جہاد، یعنی ایک ہی بات ہے وار اور جہاد، بٹ ان پیس ٹائم اٹ از ناٹ لافل، دیئر فور اینی مسلم لیونگ اینڈ سوشلائزنگ ود انفیڈلز ان دی مینر دیٹ دے آر سیف اینڈ سیکیور فرام ایچ ادر، فار ہم اٹ از ان لافل ٹو سلے دیم اور فورسفلی گراب دیئر ویلتھ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قتل کرنا تو دور کی بات، آپ ان کی کوئی چیز بھی نہیں چرا سکتے کہ یہ تو نان مسلم کی چیز ہے تو میرے لیے حلال ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ انلیس دا پیس اگریمنٹ اسٹیبلشڈ تھرو پریکٹس از ایبروگیٹڈ تھرو این اناؤنسمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یونائٹڈ کنگڈم میں رہیں، آسٹریلیا میں رہیں جا کر کے، یا امریکہ میں رہیں، ساؤتھ امریکہ یا انڈیا میں رہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر نہ تو آپ ان کی کوئی چیز چرا سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، اور نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں بیکاز ایک امپلائڈ اگریمنٹ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی لائف اینڈ پراپرٹی کو سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی شخص اگر آپ کو آ کر کے مارتا ہے ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, کوئی آپ کو آ کے مار رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا کر کے اس کو بھی ایک مار سکتے ہیں ٹھیک ہے بچانے کے لیے. اور یہ کہ اگر اس نے آپ کو مارا ہے تو آپ ایکول اینڈ اپوزٹ, بالکل ایکول آپ اس کو بھی مار سکتے ہیں, بالکل ایکول. لیکن جس نے مارا ہے اس کو مار سکتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ جس نے مارا ہے اب میں اس کے بیٹے کو اٹھا کے مارنا شروع کر دوں, یا اس کی جو ہے وہ بیوی کو اٹھا کے مارنا شروع کر دوں, یا اس کے قوم کے کسی اور فرد کو اٹھا کے مارنا شروع کر دوں. اس کی تو قرآن نے اجازت نہیں دی ہے. بھائی جس نے مارا ہے اس سے آپ, اور وہ بھی بالکل ایکول, زیادہ نہیں آپ اس سے بدلہ لے سکتے ورنہ پھر آپ ظالم بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا انڈیا میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو, اگر کوئی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو دس ڈز ناٹ گیو اے لائسنس ٹو دا مسلمز کہ اب وہ اس ریلیجن کے دوسرے لوگوں کو بھی اٹھا کے مارنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک امپلائڈ پیس اگریمنٹ کے اندر وہ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. کین سم ون لیو اے سننا سو دیٹ ہی کین فرسٹ فوکس آن میکنگ ہز فرض مور کنسسٹنٹ؟ نو دے شوڈنٹ انلیس دے آسک دیئر ایلڈرس. ٹھیک ہے, انلیس دے ہیو آسک دیئر ایلڈرس, اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے جو ہے نا کہ کیا میں کسی سنت کو چھوڑ اس لیے سکتا ہوں تاکہ مجھے فرض میں کنسسٹنسی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, مجھ سے فرض ہی نہیں ہو رہا, تو یہ خود سے اس قسم کے ڈیسیشنز نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیچرز کا اور شیخ جس کو کہتے ہیں شیخ والا سسٹم بنایا ہے تاکہ آپ یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ پوچھ کر کے کریں. بیکاز ہوگا یہ کہ شیطان آپ کو اصل میں کہہ رہا ہے کہ سنت چھوڑ دو تاکہ فرض کے اوپر تم مضبوط ہو جاؤ, لیکن یہ ایکچولی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر ہوگا کیا, آپ سنت چھوڑیں گے پہلے کیونکہ آپ سے فرض نہیں ہو رہی ہے, تو الٹا معاملہ ہو جائے گا کہ پہلے فرض بھی نہیں ہو رہی تھی اب سنت بھی چھوٹ گئی, اب دونوں ہی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا شیطان, نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا شیطان. تو اس وجہ سے مشائخ سے پوچھتے جب ہے نا تو پھر وہ شیطان کا جو راستہ ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے, پھر وہ ہمیں مس گائڈ نہیں کر پاتا ہے, ادروائز بڑی آسانی سے وہ ہمیں مس گائڈ کر سکتا ہے. If a Muslim hit me, should I hit him back? Hit him back والا جو آپ نے ابھی سنا نا کہ بالکل ایکول کی اجازت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر معاف کر دو گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا, دو ریزنس کی وجہ سے. ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر, ہماری غلطیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اگر ہم کسی اور کو معاف کر دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں, اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا آپ بھی مجھے معاف کر دیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے تو معافی ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جب آپ ہٹ بیک کرتے ہیں نا کسی کو, تو اس میں نا آپ نے کوئی میجر تو کیا نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے اتنا مارا ہے, ہے نا. کوئی آپ کے پاس کوئی اسکیل ہے کہ جس سے آپ میجر کر سکیں کہ اس نے مجھے اتنے سینٹی میٹر مارا تھا, رائٹ, یا اتنے کلو گرام مارا تھا مجھے؟ کوئی ایسا وے اسکیل ہے ہی نہیں, کوئی ایسا میجرمنٹ اسکیل ہے ہی نہیں. تو اب آپ ایکول اس کو ہٹ کریں گے کیسے, میکنگ شیور کہ آپ اسے زیادہ ہٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کسی سے بالکل صحیح صحیح بدلہ لے سکیں. تو اسی وجہ سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ معافی کر دیں, اور اس معاملے کو اگر کسی نے آپ کو مارا ہے ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے خود اس کو یعنی کرنے کے آپ بڑوں کو بتا دیں کہ بھائی انہوں نے مارا تھا تو اب آپ کر لیں کچھ اس کے. ٹھیک ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں مارا تھا, یعنی بڑوں کے پاس جائیں نا, ان کو بتائیں, خود سے نہیں مارنا چاہیے بیکاز ادر وائز اٹ کین گیٹ ویری ویری اگلی. ٹھیک ہے, دنیا میں بہت یعنی بہت گندے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایون اسکولس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جو لڑکے ہیں نا, اسپیشلی لڑکے اور لڑکیاں بھی, ویسے انفارچونیٹلی کچھ جگہوں پر سنا گیا لڑکیوں کے بارے میں بھی, لیکن لڑکے جو ہیں نا سم ٹائمز دے کیری ویپنس. ٹھیک ہے نا, کسی کس طرح کے ویپن ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے بیگ کے اندر کوئی چھری, کوئی کینچی ٹائپ کی چیز, نائف جو ہوتی ہے وہ بھی تو ایک ویپن کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس قسم کی فزیکل فائٹ کے اندر انوالو ہوں گے نا, تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ ویپن نکال کر کے پھر آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے, اور یہ ہوتا ہے, یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ کہ آپ ٹیچر یا پرنسپل کے پاس چلے جائیں اور انہیں بتا دیں کہ ایسا ایسا اس نے کیا ہے میرے ساتھ. اگر کوئی ہمیں بولے کہ فائٹ करते हैं तो क्या करें, आप उनसे कहें कि आप को मैं ही मिला हूँ खाली, हैं बेवकूफ़, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, आप किसी और को जाके बेवकूफ़ बनाएं, मुझे आप बेवकूफ़ ना बनाएं। इफ़ यू डिफेंड इज इट ए सिन, नहीं, डिफेंड करने में भाई अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को किसी से बचने के लिए डिफेंड तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन हम डिफेंड जो है वो ज़रा मारपीट वाले लोग होते हैं, तो डिफेंड को ना हम ऑफेंस बना देते हैं फौरन ही, तो उससे बड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई आप अगर आपको कहे ना कि फाइट करते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि तुम्हें दुनिया में मुझसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ नज़र नहीं आया, मैं ही एक बेवकूफ़ रह गया हूँ तुम जो इस किस्म के मशवरे दे रहे हो मुझे। ठीक है, तो इस तरह का उसको जवाब दें ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक है, उसको भी बात समझ में आ जाए। नहीं, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ना ऐसे ही जवाब देना चाहिए ताकि उनकी बिल्कुल ज़ुबान ही बंद हो जाए एकदम से। अच्छा, तो आगे कहते हैं, व्हाट अबाउट प्ले फाइटिंग? प्ले फाइटिंग क्या चीज़ होती है भाई? जी नहीं, खेल में फाइटिंग नहीं करनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, तकलीफ देखें, आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे ना, सही है, आप ये देखें, वो जो प्ले फाइटिंग है ना, अगर तो वो इट्स अंडर ए टीचर, जैसे कि आप जूडो सीख रहे हैं, राइट, कराटे सीख रहे हैं, जूडो सीख रहे हैं, तो वो तो भाई आप किसी टीचर के साथ, टीचर की ऑब्जर्वेशन में कर रहे होते हैं ना, तो वो जो प्ले फाइटिंग है वो टीचर कंट्रोल्ड होती है, ऑब्जर्व्ड होती है, ठीक है, सुपरवाइज्ड होती है, तो उसमें फिर आप कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते, वरना फिर टीचर से आपकी पिटाई होगी, ठीक है ना, या आपको वो किसी तरह से पेनल्टी करेगा। लेकिन जो खुद से हम बगैर टीचर की सुपरविजन के करेंगे ना, तो उसमें फिर कोई ना कोई रोना धोना, मार पिटाई, घरों में लड़ाई, कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकत होगी। ठीक है, तो ये इस प्ले फाइटिंग की जो आपकी शायद डेफिनेशन अगर टीचर के बगैर वाली की बात है, जस्ट फॉरगेट इट, ये डोंट इवन ट्राई इट। सही है, टुडेज वेस्टर्न कल्चर अनफॉर्चुनेटली कंसिडर्स पीपल हु स्निच एज बैड पीपल एंड यूजुअली गेट बुलीड एज अ रिजल्ट ऑफ देम टेलिंग द टीचर। जी, तो इसका हल क्या है कि अब आप मारना पीटना शुरू कर दें? नहीं, इसका हल जो है ना वो ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर से आप बुली हो रहे हैं ना, तो आप वेस्टर्न कल्चर को बुली करना शुरू कर, कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसकी फिक्र करूँ, उसकी परवाह करूँ। ठीक है ना, आई हैव माई ओन कल्चर विच इज़ गॉड गिवन कल्चर विच इज़ द इस्लामिक कल्चर। ठीक है, तो आप उन लोगों की तरफ ऊंची, यानी डोंट इवन लुक अप टू देम, व्हाई आर यू इवन लुकिंग अप टू देम? ठीक है, तो आपको पिछली क्लास में पता नहीं थे कि नहीं थे, साजिद ने एक मिसाल से समझाया था कि अगर 6 गधे खड़े हुए हों, ठीक है, 6 donkeys आर स्टैंडिंग समवेयर, ठीक है, और आप जाकर के उन 6 donkeys के साथ खड़े हो जाएं और फिर आप कहें कि यार why am I not a donkey, मैं क्यों गधा नहीं हूँ, why am I different than the rest of the crowd, तो क्या क्या कहेंगे इसको, है कि आप जो है वो क्यों गधा बनना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया था, आप गधा क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है ना, तो बिल्कुल यही मिसाल इसको याद रखें कि जो इस किस्म के कल्चर्स हैं जिनमें के इट्स नॉट गाइडेड बाय revelation, तो why are you even so worried कि भाई I'm different from others and why am I not like them, and इस तरह की बातें करने की तो मुसलमान को ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरह से सोचें कि भाई हम मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि you have to ask your parents to help you become part of a good company। ठीक है, अच्छी कंपनी का आपको हिस्सा बनना है ताकि आपके लिए आसान भी हो जाए। ठीक है ना, इतना मुश्किल भी ना रहे कि आप जो है वो हर एक से मुख्तलिफ रहें। ठीक है, तो अच्छे दोस्त जो है वो तलाश करना ये हमारा अपना काम है ना, और हमारे पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए इसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह, लड़कों की तरफ से तो बहुत सवाल आ रहे हैं और लड़कियों की तरफ से कोई भी सवाल नहीं आ रहा। चलिए, बात भी वैसे इसी तरह की हो रही है क्योंकि लड़कियाँ माशाल्लाह लड़ाई वड़ाई करती नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? If in defense you hit someone but you think you hit him more, then what should you do? Say sorry. पहली बात तो हिट करना नहीं है, और इसलिए कि फिर आप सॉरी भी करेंगे ना तो आपको माफ़ करेगा नहीं इतनी आसानी के साथ। ठीक है, तो अगर कर दें तो फिर उसके बाद वाकई उसे अपोलोजाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद है कि वो माफ़ कर भी देगा। If two people are fighting and we misunderstand the fight and took the wrong side, is it a sin? You misunderstand the fight and took the wrong side. Maybe अगर ज़रूरत थी वहाँ पर साइड लेने की, ठीक है, पहली बात तो साइड लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज उसमें एक तो ये कि गलती का बहुत चांस होता है कि आपको क्या पता कि कौन सही कह रहा है कौन कौन गलत कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फिर फाइटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो फिर वो फाइटिंग और बड़ी हो जाएगी ना। पहले 2 लोग लड़ रहे थे, वो 3 लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर वो चौथा कोई देखेगा वो भी आ जाएगा, वो भी चार, तो इस तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा मसला बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, फॉर फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द बुक, सही तो बाद में पूछने की बात है। वी शुड नॉट टेक साइड ऑफ ईदर पार्टी व्हेन समवन इज फाइटिंग। हाँ, वी शुड नॉट, वी शुड ट्राई नॉट टू, और कोशिश यही करनी चाहिए कि इसका हिस्सा ना बने। अच्छा, जो बुक का सवाल कर रहे हैं ना कि बुक कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आप मुझसे क्लास के बाद कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए एक बुक अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बुक से पढ़ रहे हैं कि द जिस्ट ऑफ द डिस्कशन इज दैट ऑफ द किबती वुड हैव बीन किल्ड विद प्री कंसीव्ड रिजॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्लाइड पीस एग्रीमेंट, इट वुड नॉट हैव बीन लॉफुल, बट मूसा अलैहि सलाम डिड नॉट हैव द इंटेंशन ऑफ किलिंग द किबती, ही ओनली हिट हिम विद हिज बेयर हैंड्स टू सेव द इसराइली फ्रॉम हिज ग्रिप, इन द नॉर्मल कोर्स इट शुड नॉट हैव बीन फेटल, बट ही डाइड ऑल द सेम बाय दैट ब्लो। Then Musa alayhi salam realized that a lighter blow would also have done the job of getting rid of him, yani usko hatane ka kaam lighter jo usse bhi ho sakta tha, to unko baad mein iska ehsaas hua. Realizing that harder blow was not needed, he repented and invoked Allah's mercy. Allah taala se maafi mangi, Allah taala ne unko maaf kar diya. स्पेशल नोट, द अबव प्रिंसिपल वाज एक्सप्लेन्ड। अच्छा, तो ये अपने टीचर का बता रहे हैं, यानी जो इस बुक के ऑथर है ना, वो है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके एक शेख थे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये सारी बातें उनको समझाई थी, ठीक है, कि नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर अगर मुसलमान रहते हो तो वो उनकी प्रॉपर्टी को नहीं यूजर्व कर सकते हैं और उनको नहीं मार सकते हैं, सारी बातें उनको इनके टीचर ने सिखाई थी। तो अब वो ये यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं अपनी बुक में कि द अबव प्रिंसिपल वॉज एक्सप्लेन टू मी बाई सैयदी, यानी मेरे मास्टर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, व्हेन आई वाज राइटिंग द कमेंट्री ऑफ सूरह अल कसस इन अहकामुल कुरान, द अरबिक कमेंट्री रिटन अंडर हिज सुपरविजन। इनके टीचर ने, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह को एक टास्क लगाया था कि आप ना हर सूरत के अंदर जो शरीयत के अहकाम आए हैं ना, जो कमांडमेंट्स आई हैं शरीयत की, उनके ऊपर एक बुक लिखें, ठीक है। उस बुक का नाम था अहकामुल कुरान, और ये उन्होंने अरबिक में लिखी थी, ठीक है। इट इज द लास्ट एकेडमिक डिस्कशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको कुछ बताना है इसके अंदर। वो ये है कि इट इज द लास्ट एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ सैयदी फ्रॉम विच आई हैव बेनिफिटेड एज ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन रजब 2। देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, द डेट इज रजब 2, 1362 आफ्टर हिजरी, and after that his sickness intensified, and on Rajab 16, 1362, he passed away. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi अपने शेख के बारे में ये लिख रहे हैं कि रजब 2 तक जो है ना, वो अपना जो स्कॉलरली काम था वो उसमें लगे हुए थे, किताबें लिखना, किताबों को पढ़ना, किताबों को अपने स्टूडेंट से चेक करना, ये सेकंड रजब तक उनका चल रहा था। और इसके बाद वो इतने बीमार हो गए कि विद इन 13 डेज ही पास्ड अवे, यानी अपनी मौत से सिर्फ 13 दिन पहले ही वाज स्टिल बिजी इन हिज वर्क, ठीक है। ये एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, ये बीमारी से मरे थे, ये बूढ़े होकर के मरे थे, ठीक है। तो ऐसे होते थे हमारे अकाबरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इतनी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, नेकी की जिंदगी गुजारते हैं, इल्म की खिदमत के अंदर, कुरान की खिदमत के अंदर लगे रहते हैं कि वो आखिरी वक्त तक ये नेक काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होता है? ये उस वक्त पॉसिबल होता है कि जब आप अपनी यूथ में भी जो है ना वो नेक काम कर रहे हो, ठीक है, कुरान की खिदमत, नेकी के काम और अच्छाई की बातें, किताबें लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, अगर आप अपनी यूथ में इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे ना, तो फिर ओल्ड एज में जाकर के अल्लाह ताला की तरफ से आपको नेकियों की तौफीक मिलती रहेगी। हमारे शेख के जो शेख थे वो 87 इयर्स में उनका इंतकाल हुआ, ठीक ठीक है, यानी सिक्स मंथ्स बिफोर हिज डेथ ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दावा, ठीक है। आखिरी छह महीने में वो जो बीमार हुए तो उनकी ट्रैवलिंग खत्म हो गई, लेकिन वो फिर भी अपने दीन का काम अपने घर से ही और अपने बिस्तर से ही करते रहे, ठीक है। तो ये उस वक्त होता है कि जब आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसको फरमाया है, ठीक है। ये जो सूरह तीन तो इंशाल्लाह सबको आती होगी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون, ठीक है। ये जो है ना فلهم اجر غير ممنون, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने नेक काम किए ना, ईमान लेकर के आए और नेक काम किए ना, तो उनका अजर कभी भी खत्म नहीं होता। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उस वक्त भी जो जवानी में वो नेक काम कर रहे थे उनका अजर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अल्लाह ताला उनको बुढ़ापे में भी अजर देते रहते हैं। अजरुन गैरु ममनून का ये मतलब है सूरह तीन के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास हेल्थ है, और यानी सारी रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उनको नेक कामों के अंदर लगाना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकते आप कि जब बूढ़े होंगे तब नेक बन जाएंगे, तब जो है वो कुरान पढ़ लिया करेंगे, तब जो है वो दीन का इल्म हासिल कर लेंगे। नहीं, अगर आपने अभी नहीं किया ना, तो बूढ़े होने के बाद आपको तौफीक नहीं मिलेगी अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अच्छा, क्यों मुझे कोई एक मिनट ठहर जाए, कॉल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी बहुत सारे भेजे जा रहे हैं, क्या मतलब है, क्लास में लिखने भाई, व्हाट्सएप देखना मुमकिन नहीं होता क्लास के दौरान, ठीक है, क्लास के बाद आप व्हाट्सएप करें। अच्छा एक मिनट है, सचिन ही गायब हो गया, चल तो स्पेशल नोट हो गया। सम कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑल्दो किलिंग ऑफ द तिब्बती वाज परमिसिबल, ठीक है, ये भी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किलिंग ऑफ द तिब्बती जो है ना वो पॉसिबल हो भी सक, यानी वो परमिसिबल हो भी सकता था। उसकी वजह आप में से किसी को याद है लास्ट टाइम ये क्यों, यानी इसकी रीजन बताई थी कि एक तो ये ओपिनियन है ना स्कॉलर्स का कि भाई ये परमिसिबल नहीं था मूसा अलैहि सलाम के लिए, ठीक है, मूसा अलैहि सलाम के लिए हैज वेंट लो। अच्छा, औरों को भी कोई मसला है वॉइस के अंदर? अच्छा, पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए परमिसिबल नहीं था उस किप्ती को मारना, तो ये तो एक ओपिनियन है स्कॉलर्स का, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ओपिनियन भी है स्कॉलर्स का कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए परमिसिबल था इस किप्ती को मारना, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या बताई थी आपको, याद है किसी को? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए परमिसिबल था, ये भी तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा है ना, तो लिख करके जवाब दें, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं है कि मासूम होता है वगैरह, नहीं परमिसेबल क्यों होता है, मासूम के लिए कोई लोगों को कत्ल करना को थोड़ी परमिसेबल हो जाता है, उनका ये मतलब नहीं है। मासूम का मतलब ये होता है कि वो गुनाह कर नहीं सकते, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि वो हर वक्त जो है वो किसी इंसान को कत्ल कर सकते हैं, ये मतलब नहीं है ना। तो परमिसेबल होने की क्या रीज़न हो सकती है, वो ये है कि भाई जो जिहाद होता है वो मुस्लिम लीडर के साथ होता है, जब मुस्लिम लीडर अवेलेबल है तब आप जिहाद कर सकते हैं, ठीक है ना, तब आप नॉन मुस्लिम को मार सकते हैं। जब मुस्लिम लीडर है और वो आपको हुक्म दे रहा है कि जी आपने जिहाद करना है, अभी शरीयत के मुताबिक जिहाद फर्ज हो गया है, ठीक है, तो आपको ये बात समझाई थी कि जिहाद जो है वो मुस्लिम लीडर के बगैर नहीं किया जा सकता, कोई भी जो है वो गुस्से में आकर के किसी को मारना नहीं शुरू कर सकता, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसलिए कि उनके लिए परमिसिबल होने की वजह ये थी कि भाई ही वॉज द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स हिमसेल्फ, राइट, तो भाई खुद लीडर थे ना मुसलमानों के, तो इस वजह से लीडर जो है वो तो जिहाद करता है, बल्कि खुद नहीं करता दूसरों से भी करवाता है, तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकती है कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इसको कत्ल करना जो है ना ये हराम नहीं था बल्कि परमिसिबल था। बहरहाल दिस इज वन ऑफ द ओपिनियंस। दूसरा ओपिनियन जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी परमिसिबल नहीं था, क्योंकि एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट चल रहा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट चल रहा था।
अच्छा, तो सम कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व दैट अ लोकलिंग ऑफ द कबती वाज परमिसिबल बट प्रॉफिट्स टेक एक्स्ट्रा केयर इन स्पेशल केसेस इवन इन परफॉर्मिंग परमिसिबल एक्ट्स एंड अवॉइड देम. ठीक है, यानी इवन परमिसिबल एक्ट्स जो होते हैं ना उनमें भी बहुत केयरफुल रहते हैं अनलेस दे रिसीव ए क्यू फ्रॉम अल्लाह ताला. यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक्सप्लिसिट हुक्म आता था ना तब प्रॉफिट्स कोई काम करते थे, अदरवाइज जो है ना वो बहुत ही मोहतात रहते थे. और तकवा, इसी को तो तकवा कहते हैं, बहुत एहतियात करना. अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर तो करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला नाराज होंगे. लेकिन अगर हुक्म नहीं आया हुआ है तो फिर अपने तौर पे ना वो एक्शंस नहीं लिया करते थे बल्कि वेट किया करते थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बहुत इस तरह से यानी वाकयात मशहूर हैं कि जिसमें कि किसी ने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पूछा, कोई बात पूछी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जवाब नहीं मालूम था, तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जवाब देने के बजाय उनको कहा कि भाई जब अल्लाह का हुक्म आएगा ना तभी मैं जवाब दूंगा, अभी तो मैं नहीं जवाब दे सकता. ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मामलों में किया था कि जिनके अंदर यानी बिल्कुल बात क्लियर नहीं थी कि क्या अल्लाह ताला की मर्जी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेट किया अल्लाह ताला के हुक्म का. ठीक है, तो एहतियात इसी को कहते हैं कि भाई बहुत केयरफुल मामला रखना. On this occasion, Sayyidina Musa alayhi salam did not wait for the permission of Allah Ta'ala and acted on his own. Therefore, in view of his status as a prophet, he maintained that it was a sin on his part and hence invoked Allah's pardon. ठीक है, अच्छा क्या पूछ रहे हैं आप? Sometimes mothers often give a slap. Somewhere I heard that Prophet Musa alayhi salam didn't like beating on faces. Will my mother get a sin? मैं आपके साथ बैठी हुई हैं. हाँ, चेहरे के ऊपर मारना मना है. ठीक है, तो अगर आपकी अम्मी भी सुन रही हैं तो यानी अगर मारने की ज़रूरत पड़ जाए ना इनको तो मुंह पे मत मारें, स्लैप ना करें, बल्कि फिर किसी और तरीके से इनकी दुगाई कर सकते हैं आप. नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको बगैर मारे ही जो है बात समझ में आ जाए, तो आप खुद ही समझ जाया करें ना, ज़रूरत ना पेश आए इनको मारने की. ठीक है, चले आगे चलते हैं. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. He, yani Musa alayhi salam, said, "Oh my Lord, since you have favored me, I will never be a supporter to the sinners." When Allah Ta'ala pardoned the slip of Musa alayhi salam, he said in gratitude to Allah Ta'ala that he would never again help a criminal. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बस ये एक रूलिंग देख लेते हैं इसी पेज पे 636 के ऊपर कि इसमें से शरीयत की रूलिंग यानी अहकाम क्या निकलते हैं इस वाक्य से ना, तो उसको लिख रहे हैं कि इट इज़ वर्थ नोटिंग हियर दैट दिस सेइंग ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम हैज एस्टैब्लिश्ड टू रूलिंग्स अबाउट टू इश्यूज. वन, दैट इवन इफ एन ऑप्रेस्ड पर्सन इज अ सिनर और इनफिडल, यानी काफिर है, मजलूम आदमी काफिर भी है ना, ही शुड बी हेल्प्ड. ठीक है, तो इवन काफिर को भी आपने हेल्प करना है अगर वो मजलूम है, यानी उसके ऊपर कोई दूसरा जुल्म कर रहा है. ठीक है, बेशक कोई भी हो. द सेकंड रूलिंग इज दैट इट इज नॉट परमिटेड टू हेल्प एनी क्रिमिनल और ऑप्रेसर. ठीक है, जो जालिम हो उसको हेल्प करना जो है वो परमिटेड नहीं है, यानी वो हलाल नहीं है. अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान के अंदर एक्सप्लिसिटली हुक्म भी दिया है, तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा, कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करो, तआवुन करो नेकी के ऊपर और तकवा के कामों, यानी दोनों का मोर और लेस एक ही मतलब है, तो नेकी का के कामों में एक दूसरे की मदद करो. वला तआवनु अलल इस्मे वल उदवान, और गुनाह के और ऑपरेशन वाले जो काम होते हैं ना उनमें एक दूसरे के साथ असिस्टेंस एक दूसरे की नहीं करो, तआवुन ना करो. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का बिल्कुल क्लियर हुक्म है, और इस हुक्म की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर वो फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं, देखते नहीं है कि जी जिसके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई है वो नेक है कि वो ऐसे ही है बस, जिसके नज़दीक कोई नेकी वेकी की अहमियत नहीं है. तो अब जब इस किस्म के मसले आते हैं, किसी के साथ उनकी लड़ाई होती है, तो अब वो हेल्प के लिए बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो अब इनके लिए एक बड़ा एक ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि जी अब अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मुझसे कुट्टी हो जाएगा, वो मुझसे दोस्ती ख़त्म कर देगा, तो अब तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी. इवन दो इनको खुद पता होता है कि वो सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन गलती किधर हुई थी? फ्रेंडशिप बनाने में. फ्रेंडशिप ही नहीं बनानी चाहिए. ठीक है, जब आपने एक दफ़ा फ्रेंडशिप बना ली ना,
तो अब आपके लिए फिर इन मसलों से बच के रहना, दूर रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं होता, बल्कि अगर वो कोई और किस्म का बुरा काम कर रहे हैं और आपसे असिस्टेंस मांग रहे हैं, जैसे चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने उनसे दोस्ती बनाई हुई है, वो आपसे जो है वो कह रहे हैं कि मुझे चीटिंग करवा दो, मुझे, जैसे वो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, तो वो ना खास तौर पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्तियां बनाते हैं और उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट भी ला करके देते हैं। ठीक है, और मकसद उनका क्या होता है, ताकि एग्जाम के अंदर ये इनको हेल्प करें, इनके उनको चीटिंग करवाएं, और इस तरह की चीज़ें बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सारी जगहों पे चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल मना किया हुआ है, और अगर आप करेंगे ना, तो सिर्फ उसको चीटिंग करने का गुनाह नहीं होगा, बल्कि आपको चीटिंग करवाने का भी गुनाह होगा। और इसी तरह से हर मामले में चलता है ये वाला उसूल। डिडंट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेल्प योर ब्रदर वेदर ही इज एन ओप्रेसर और ए विक्टिम? जी, तो ओप्रेसर की हेल्प करने के लिए फिर बताया भी तो था ना, सहाबा ने पूछा था ना कि भाई जो विक्टम होता है उसकी मदद करना तो हमारे समझ में आता है, लेकिन ओप्रेसर की हम कैसे हेल्प करें? ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन फिर आपसे सुन फरमाई थी ना कि ओप्रेसर की हेल्प ऐसी की जाती है कि उसको ऑपरेशन से रोको। ठीक है, तो यानी उसकी मदद नहीं करनी है ऑपरेशन करने में, ठीक है ना, उसको गुनाह के ऊपर मदद नहीं करना, बल्कि गुनाह से रोकना है उसको। अब रोकेंगे आप कैसे? अब उसको पकड़ करके और खींच करके, जरूरी नहीं है कि आप उसको रोक सकें, तो आप उसको समझा सकते हैं, या आप इवन किसी बड़े को बता करके, ताकि बड़ा जो है ना उसको इस गुनाह से किसी तरीके से रोक ले। आप अगर ना भी रोक पाए तो बड़ा तो रोक सकता है ना, उसके पास तो इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर होती है ना। तो वन वे और दी अदर आपको ऑपरेशन में आप असिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम हमारा तकरीबन हो गया है, लेकिन जो आगे की वर्सेस हैं उसको बस पढ़ लेते हैं चले, ताकि अभी क्लास में हम ट्रांसलेशन से शुरू कर लें। तो आगे वर्सेस हैं वर्सेस नंबर 22 to 28। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसको अल्लाह ताला आगे चलाते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयना काल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। ठीक है, अब ये खाली तिलावत करना क्या करें, तिलावत तिलावत खाली कर लें, ट्रांसलेशन में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सिर्फ तिलावत कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा वरद मा अमदियना वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कूना ववजद मिन दूनिहिम उम्रातानी तजूदान काला मा खत्बुकुमा कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ व अबूना शेखुन कबीर फसका लहुमा ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत की खातिर हमने कुरान पाक की आयात की तिलावत कर ली है, अब इंशाल्लाह ट्रांसलेशन और कमेंट्री से अगली क्लास में शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो? अच्छा, ये मैंने काफ़ी देर से देखा नहीं है सेशन को। अच्छा, किसी को अगर कुछ और क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना खुद भी आप लोग ये ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, तो अगली क्लास में आपके लिए और अच्छा रहेगा अगर आपने पहले से पढ़ के रखी हुई होगी। ठीक है, चलें फिर, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।